शांति। संगम युग पर मीठे बाबा ने हम सभी को अनेक प्रकार की शक्तियां दी हैं। सर्वशक्तिवान बाबा ने एक एक बच्चे को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। आज जिन दो शक्तियों पर स्पष्टीकरण के लिए मुझे कहा गया है, शायद बहुत कम इस विषय पर चर्चाएं हुई हूं। बाबा हम बच्चों को वर्तमान समय की मुरलियों में विशेष इशारा दे रहे हैं समय की समीपता का। अभी तक हम सब ने करीब 9-10 मुरली सुनी है इस सीजन में, और पहली मुरली से अब तक की सभी मुरलियों में समय की सूचना अचानक और एवर रेडी बनने का इशारा और समय की समीपता को कॉमन नहीं समझना, ऐसी बहुत सी प्रेरणाएं बाबा ने इस बार दी हैं। मैं समझता हूं इसी संबंध से ये विषय मुझे दिया गया है, और जब इस विषय पर थोड़ा सा विचार करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं को सहज पुरुषार्थ की विधि चाहिए, और सबसे सहज पुरुषार्थ की विधि है कैचिंग पावर। बाबा क्या कहना चाहता है, बाबा के क्या इशारे हैं, समय की क्या गति है, उसको आत्मा फौरन कैच कर ले और कैच करके उसी प्रमाण करने लगे, ऐसी पावर हम सबके अंदर आ जाए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे समय की हलचलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं के रूप में माया के पांचों विकारों का विकराल रूप, प्रकृति के पांचों तत्वों का भयानक रूप हम सभी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हर प्रकार से समय की समीपता, परिवर्तन के समय की समीपता दिखाई देती है। क्या अचानक होगा उस विषय में मैं आज स्पष्टीकरण नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको ये जो दो शक्तियां दी हैं, सबसे पहले पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए बाबा कहते, बच्चे अपने आदिकाल के संस्कारों को कैच करो। 5000 वर्ष पूर्व जब मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई, उस समय के जो संस्कार थे, दैवी संस्कार, देवताई संस्कार, सतोप्रधान संस्कार, कलयुग के अंत में स्मृति इतनी पावरफुल हो, इतनी शक्ति संपन्न हो, इतनी श्रेष्ठ हो, जो 5000 वर्ष पहले की स्मृति, वो संस्कार हम सभी कैच कर सकें। क्योंकि मध्यकाल के संस्कारों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता जा रहा है। इस बार बाबा ने बहुत सरल भाषा में हम सबके आगे स्पष्ट किया है कि बच्चे, जिनको आप पुराने संस्कार कहते हो, ये पुराने नहीं हैं, ये माया के संस्कार हैं, ये मध्यकाल के संस्कार हैं। वास्तव में आपके पुराने संस्कार जो देवताई संस्कार हैं, अनादि और आदि संस्कार हैं, वो संपूर्ण पवित्रता के संस्कार हैं। अभी इस समय तुम उन संस्कारों को कैच करो। जैसे साइंस के द्वारा पिछली आवाजों को कैच कर रहे हैं, प्रयास करते हैं, महाभारत काल कैसा होगा, उस समय क्या आवाज होगी, कौन सी भाषा होगी, किस तरह से वार्तालाप चलती होगी, साइंस के साधनों द्वारा प्रयत्न करते हैं पिछली आवाजों को कैच करने की। हम सबके पास बहुत बड़ी शक्ति है, साइलेंस की शक्ति, और उस साइलेंस की शक्ति के आधार से हम अपने पास्ट की आदि संस्कृति क्या थी, आदि संस्कार क्या थे, उस स्मृति में जब टिकते हैं, उसको स्वरूप में ले आते हैं, तो पुरुषार्थ की मेहनत समाप्त हो जाती है, युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्मृति आती है कि हम ही तो देवता थे और हमें ही बनना है, बाबा हमको ही बनाने के लिए आया है, कहता बच्चे मैंने तुमको ऐसा बनाया था। तो पुरुषार्थ की सहजता के लिए 5000 वर्ष की बातों को, पहले की बातों को कैच करना, इसलिए बाबा कई बार जब पहले पहले बाबा से कोई ग्रुप मिलने आते थे साकार में, तो बाबा ये प्रश्न करते थे कि बच्चे तुम पहले कभी मिले हो, तो जो पहली बार आते थे वो मूझते थे, समझते थे क्या उत्तर दें, तो बहनें उन्हें पढ़ा करके लाती थी कि बाबा को कहना हाँ बाबा 5000 साल पहले मिले थे। 5000 साल वर्ष के पहले की बात इतनी स्पष्ट स्मृति में आ जाए, इसलिए आप सभी जब बाबा के घर में आते हो, पहली बार जो आते हैं, उनको भी अनुभव होता है ये तो अपना घर लगता है, देखा हुआ लगता है, ये अपने भाई बहने लगते हैं, वो स्मृति इमर्ज हो जाती है। जब आत्मा अपने समान में स्थित होती है, श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होती है, तो पिछली स्मृतियां, बहुत पिछली पुरानी 5000 साल वाली इमर्ज होने लगती हैं, उनको हम कैच कर लेते हैं, और उस स्मृति में रहने से वर्तमान जीवन बहुत सहज और सुखद अनुभव होने लगती है। बाबा हमारे पास्ट को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है, इसलिए अगर वर्तमान में किसी बच्चे के सामने कोई माया है, हलचल है, विघ्न है, संस्कार हैं, तो बाबा उसको देख करके उसके वर्तमान पर ध्यान नहीं देता, लेकिन समझता है यही बच्चा तो मेरा बना था, इसको ही तो मैं बनाऊंगा, और कौन आएगा बनने के लिए। इस स्वरूप में त्रिकालदर्शी स्थिति में बैठकर ज्ञान देता है, समझाता है, पढ़ाता है। हम बच्चों को भी यही स्मृति दिलाता है कि बच्चे बाबा के इस नॉलेज को बहुत विशालता से ग्रहण करो, हर आत्मा को त्रिकालदर्शी स्वरूप में देखो, भल वर्तमान समय किसी संस्कार के स्वभाव के बस परवश है, अधीन है, लेकिन पास्ट में यही देवता बनी थी और भविष्य में फिर से बनने वाली है, इस स्मृति को जागृत कर देता है। साथ साथ बाबा की डायरेक्शंस, तीन बातें बाबा ने इस बार मुरली में कही थी, आप सबने ध्यान दी होगी, श्रीमत, डायरेक्शन और इशारे। साकार बाबा की मुरलियों में हम सबको श्रीमत बहुत स्पष्ट रूप से मिली हुई है। जब से हम बाबा के बने, जन्म हुआ, तब से लेकर के अब तक कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहारिक जीवन में आना है, हर प्रकार की श्रीमत साकार में बाबा ने दे दी। बीच बीच में अव्यक्त वतन से हम सबको, जैसे डायरेक्टर एक्टर्स को डायरेक्शन देता है, अगर कोई एक्टर बीच में गलत एक्शन कर दे, ठीक एक्शन न हो रही हो, तो बीच बीच में इशारा कर देता है, तो बाबा के डायरेक्शंस भी हम सबको मुरलियों के माध्यम से, अव्यक्त रूप में भी मिल रहे हैं और ये सारे सिग्नल्स इतने स्पष्ट रूप से, जैसे बीच बीच में जब ट्रैफिक होती है तो सिग्नल्स लगे होते हैं या कोई पुलिस ऑफिसर पुलिस वाला खड़ा होता है इशारा करने के लिए, यहाँ पर ब्रेक दे दो, यहाँ रुक जाओ, इधर चले जाओ, इधर आ जाओ, इशारे से काम करता है। बाबा भी अभी वतन में बैठ करके हम सभी को अव्यक्त इशारे दे रहा है और कैसे इशारों को हम समझ सकें, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान पर रखने की जरूरत है। श्रीमत तो सभी ब्राह्मणों के आगे स्पष्ट है क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हर बात की श्रीमत दे दी है। डायरेक्शन को कोई कैच कर पाता है, कोई नहीं कैच कर पाता है, और इशारों को कैच करने के लिए बहुत क्लीन स्वच्छ और साफ बुद्धि चाहिए, कैच कर सके बाबा क्या चाहता है। कभी भी उन कैचिंग में अपनी मन मत या पर मत मिक्स न हो, बाबा जैसा चाहता है आत्मा उसी तरह से कैच कर सके, उसके लिए आज कुछ बातों पर ध्यान देने की जो आवश्यकता है उस पर हम आपका ध्यान खिंचवाएंगे, क्योंकि बाबा हम सबको इशारे बहुत दे रहा है और इतने गुप्त इशारे दे रहा है क्योंकि समय की समीपता के अनुसार, माया की तमो प्रधान स्टेज के अनुसार बाबा को पता है कि बच्चों के आगे हर पल पेपर आते हैं, कोई न कोई रूप में परीक्षाएं आती हैं और उन परीक्षाओं को पार करने के लिए बच्चों को इशारे की जरूरत है, लेकिन वो इशारे कैच कर सकते हैं इतनी बुद्धि धैर्यवत है, इतनी बुद्धि एकाग्र है, इतनी स्थिर है, इतनी अव्यक्त बनी है जो अव्यक्त इशारों को कैच कर सके। अगर व्यक्त भाव में हम हैं, हम फुल बॉडी कॉन्शियस में हैं, देहाभिमान में हैं और बाबा अव्यक्त रूप में हमें इशारा कर रहा है, बच्चे ये रांग है, ये राइट है, ये करना है, ये नहीं करना है, हम बाबा के इशारों को कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा हम सबको कहता है, बच्चे पहले अपनी बुद्धि को असोचता बनाओ, अधिक सोचने की आदत नहीं रखो। कई बच्चे छोटी छोटी बातों को बहुत सोचते हैं, बहुत विस्तार में चले जाते हैं और इतना विस्तार कर लेते हैं जो फुल स्टॉप लगाने में मेहनत लगती है। बाबा कोई बात अगर कहना चाहता है, इशारा करना चाहता है, बुद्धि इतनी इंगेज रहती है जो बाबा कहता है मैं कॉल करता हूँ, फोन करता हूँ, लेकिन बच्चों का रिसीवर या तो उतरा है या तो कहीं न कहीं इंगेज है, इसलिए मेरी टचिंग, मेरी बातों को, इशारों को बच्चे कैच नहीं कर पाते। और आप हम सभी जानते हैं कि अगर कोई कैच न कर पाए क्या होगा, हर पल धोखा है, दुख है, दुविधा है। इस दुनिया के अंदर धोखा देने वाली भी आत्माएं बहुत हैं, दुख देने वाली भी बहुत हैं और दुविधाएं इतनी हैं, क्या करूं क्या न करूं, यही राइट है या नहीं है ये भी नहीं समझ में आता। और बाबा ये भी हम बच्चों को इशारा करते हैं, बच्चे जब बाबा आता है इस सृष्टि पर, बाबा श्रेष्ठ मत देता है तो माया भी अपना भगवान के रूप को भी धारण करके सामने आती है, वो भी अपने विकराल रूप से बच्चों के सामने आती है और ऐसा रूप बना लेती है जैसे बाबा की आवाज है, जैसे बाबा पधारते हैं, ऐसे कई स्थानों पर बाबा आने लगते हैं और उस रूप को कहते हैं हमारे यहाँ बाबा आता है, हमारे यहाँ ये पाठ चलता है, पहचान नहीं पाते और माया के उस चक्र में फंस करके कई आत्माएं बाबा से भी विमुख हो जाती हैं, कैच नहीं कर पाती हैं कि बाबा क्या है, बाबा का पार्ट क्या है, बाबा की शिक्षाएं क्या हैं, बाबा हमसे चाहता क्या है, मनुष्य आत्माओं की मत का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए इस बात को बाबा बहुत गहराई से हम सबके सामने रखते हैं कि बच्चे बाबा के इशारों को, बाबा के स्वरूप को पहले कैच करना सीखो। क्या बाबा चाहता है, बाबा की क्या इच्छाएं हैं, बाबा की क्या अंदर की चाहनाएं हैं, क्योंकि बाबा विश्व कल्याणकारी है, बाबा पतित पावन है, बाबा गति सदगति दाता है। जिस स्वरूप में है, यदि आत्माएं उसके जरा भी विपरीत दिशा में जाकर के कोई राय दे रही हैं, मत दे रही हैं, अपनी बुद्धि के अभिमान बस कोई बात कह रही हैं, भले वो भगवान का रूप लेकर के कहें, उसे आपको परखना होगा। बहुत बुद्धि सौर्प चाहिए, कोई भी बात को कैच करने के लिए बहुत अलर्ट चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए, ऐसे कैच नहीं हो सकती। कई रूप में माया अपने छलावे रूप से आती है सामने और भोले भाले बच्चे उसे परख नहीं पाते, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए माया के स्वरूपों को, भिन्न भिन्न रूपों को परखना और अपने आप को बचा लेना, उसके लिए बुद्धि की दिव्यता चाहिए। बुद्धि कहीं भी फंसी हुई न हो। हम सभी कई बार कहते हैं, साधारण भाषा में योग करते हैं तो हमारे मुख से निकलता है कि बाबा की टचिंग ये है, और कई आत्माएं बाबा की टचिंग कह करके अपनी बात को लोगों के आगे अपने प्रभाव को दिखाना चाहती हैं। ये बाबा की टचिंग, बाबा मुझे टच करता है, मैंने बाबा से बातें की है, बाबा ने मुझे कहा है। इस बात पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे 3 मिनट योग करने के बाद। हम सब ने अपनी परम आदरणीय दादी जी को सामने देखा है, बहुत से भाई बहने यहाँ बैठे हैं जिन्होंने दादी जी की साकार पालना ली है, और दादी जी के अनुभव बहुत समीपता से हमने पर्सनल किए हैं। कैसे बाबा की टचिंग उनको आती थी, कैच नहीं करती थी लेकिन टचिंग कैसे आती थी। टच किसको किया जाता है, ऐसे टच नहीं करता है कोई सबको, लेकिन हर रोज दादी जी के अनुभव में हम सब ने देखा कि बाबा उनको रोज टच करता है। दोपहर को रूम में कमरे में जाती थी, आधा घंटा एक घंटा मुश्किल से विश्राम किया और कुछ न कुछ प्लान बुद्धि में आते थे, नए नए सेवा के प्लान, और उसी समय मुझे बुलाती थी कि आज मुझे बाबा ने ये कहा है, ये टच किया है, अभी लिखो ये सबको भेजो। ब्राह्मण आत्माओं की स्वउन्नति हो, सेवा की वृद्धि हो, सभी सेवा स्थान निर्विघ्न बने, हर ब्राह्मण आत्मा निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त हो, समस्याओं से मुक्त हो जाए, छुटकारा प्राप्त कर ले, दादी जी को इसके विषय में रोज बाबा की टचिंग आती थी, और बाबा उनको ऐसी ऐसी नई नई युक्तियां, ऐसी प्रेरणाएं देते थे जो फौरन कार्य कर लेती थी। बाबा ने कहा करो लिखो। कई बार हमने देखा कई बातें जिसमें थोड़ा सा आपस में डिबेट का रूप हो, माना कोई कह रहा हो करना चाहिए, कोई कह रहा हो ना करना चाहिए, संगठन है, परिवार है, बड़े भाई बहने हैं, सभी साथ रहते हैं, हम सबकी सुनते हुए, दादी हमारी सबकी सुनते हुए, और बाबा के कमरे में जाती थी, बाबा उन्हें टच कर देता था। एक बार की बात है, किसी स्थान पर जाना था, प्रैक्टिकल का अनुभव मैं बता रहा हूं, और सबका निर्णय था, कुछ कह रहे थे जाना चाहिए, कुछ कह रहे थे नहीं जाना चाहिए। दादी जी ने कहा नहीं, हमको जाना तो चाहिए, ऐसी समस्या ऐसी बात है, और उन्होंने अपना सामान पैक कराया, गाड़ी मंगाई और लोड कर दिया। फिर गई बाबा के कमरे में, और बाबा के कमरे में जाकर के बाहर निकली, कहती है सामान उतार दो। क्या हुआ दादी, बाबा साकार में तो नहीं बैठा है? बोली नहीं, बाबा ने मुझे कहा है, बोला कुछ नहीं लेकिन लाल झंडी दिखाई है, बच्चे नहीं जाओ। इतनी स्पष्ट श्रीमत, इतनी स्पष्ट टचिंग, नहीं जाओ, माना सामान उतार दो, नहीं जाना है। फौरन निर्णय ले लिया, और कोई भी जाने का लाभ नहीं हो रहा था, जाने का लाभ नहीं था। बाबा ऐसे निमित्त आत्माओं को, जिनकी बुद्धि बहुत साफ है, स्वच्छ है, जो संपूर्ण बाबा पर निर्भर करते हैं, संपूर्ण निश्चय है ये भगवान का कार्य चल रहा है, वो करण करावन हार है, वही कराने वाला है, जहां ले जाएगा वो ले जाएगा, मैं आत्मा तो केवल निमित्त मात्र हूं, इतनी बुद्धि सरेंडर है, स्वच्छ है, साफ है, जरा भी उसमें अभिमान वाली बुद्धि मिक्स नहीं है, तो बाबा उसको टच करता है। अगर बुद्धि में जरा भी मनमत मिक्स है, हलचल वाले संकल्प हैं, किसी भी प्रकार की उसके अंदर मिलावट है, तो बाबा की टचिंग यथार्थ रूप में नहीं आती। और बाबा की टचिंग है तो उसकी निशानियां मैं आपको दो तीन सुना देता हूं। कई लोग कह देते हैं बाबा की टचिंग है, और उस टचिंग के कारण कुछ आत्माएं अपनी मन मत उसके अंदर मिक्स कर देती हैं। बाबा कहते हैं अगर बाबा की टचिंग यथार्थ आपको आ रही है तो उसके अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए। ठीक है या नहीं, राइट है रॉन्ग, क्वेश्चन क्यों? अगर भगवान टच कर रहा है, निसंकल्प स्थिति होनी चाहिए, और वो विचार बार बार नहीं आने चाहिए जो आपके मन में पहले चल रहे थे। एक टिक, एक एकाग्रता के आधार से यथार्थ वही बात जो होने वाली है वही संकल्प आएगा, और नवीन संकल्प आएगा, पुराना ही नहीं संकल्प रिवाइज होगा। उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं ऐसे मिक्स नहीं होगा, दुविधा नहीं होगी, उलझन नहीं होगी, बहुत लाइट स्थिति होगी, हल्कापन होगा। क्योंकि कोई भी साधन, चाहे वो साइंस का है या साइलेंस का, कार्य तभी करता है जब लाइट का सहारा है। अगर लाइट न हो, लाइट का आधार निकल जाए, आपके पास साइंस के कितने भी अच्छे साधन हो, बहुत अच्छा कैमरा हो, दृश्य को कैच नहीं कर सकता है, आवाज को पहुंचा नहीं सकता है, टेलीविजन, टीवी, अन्य साधन जितने भी साइंस के हैं, उसके पीछे आधार है लाइट। और बाबा भी हम बच्चों को कहता है आपके साइलेंस की पावर कार्य तभी करेगी, आपकी मनसा अन्य आत्माओं का परिवर्तन तभी कर सकेगी, आप बाबा की प्रेरणाओं को कैच तभी कर सकोगे जब बुद्धि बहुत लाइट होगी। और वो डबल लाइट स्थिति जिसमें किसी भी प्रकार का मैंपन का बोझ नहीं है, किसी भी प्रकार की देहाभिमान का बोझ नहीं है, बहुत डबल लाइट स्थिति है। एक ज्योति स्वरूप है, एक हल्की है, बाबा उसको टच करता है। दूसरा, जैसे साइंस वायरलेस के थ्रू कार्य कर रही है, इतनी दूर दूर की चीजों को कैच करने के लिए वायर बिछाने की जरूरत नहीं है, वायरलेस कार्य कर रही है। बाबा हम सबको कहता है, मेरे बच्चों की बुद्धि यथार्थ रूप से कार्य तब करेगी जब वॉइसलेस होगी, वायरलेस नहीं वॉइसलेस, एकदम संपूर्ण पवित्र स्वच्छ निर्मल। वॉइसलेस बुद्धि में यथार्थ टचिंग आएगी। हम सभी वर्तमान समय के अनुसार, हम सब जानते हैं, दुनिया भी उसी ओर प्रेरित हो रही है, कह रही है कि बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। हर प्रकार से अति की ओर हम सब बढ़ रहे हैं, तमो प्रधानता में, विकारों में, प्रकृति के तत्वों में, हर क्षेत्र में अति हो रही है और अति अंत की निशानी है। एक बार बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे, जब अब्दुल कलाम जी बाबा से मिल रहे थे, आए थे, बाबा ने बहुत अच्छे शब्द दिए संदेश के माध्यम से कि बच्चे तुम्हारा संकल्प जरूर साकार होगा, जो तुमने 2020 का सपना देखा है बोलते हुए साकार होगा, लेकिन वो कैसे होगा उसकी एक विधि बताई कि अभी अति होगी, अति के साथ अंत होगी और अंत के बाद आदि होगी। आएगा सतयुग, आएगा राम राज्य, सुख शांति होगी, लेकिन हर क्षेत्र में अति के बाद अंत होगी और अंत के बाद आदि होगी। ये बहुत गहरी बात है और इस बात को समझने के लिए हम सभी को इस समय अपनी टचिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अति के समय अति हलचल होगी, भटकती हुई आत्माओं का भी वार होगा, विनाश के भी तत्व अनेक प्रकार के विकराल रूप होंगे। बाबा कहता, बच्चे घबराना नहीं, डरना नहीं, तुम नॉलेज फुल हो, तुम सब पार हो जाओगे, पास हो जाओगे, तुम्हारे साथ कौन है। लेकिन बुद्धि को कहीं भी जरा हलचल में नहीं लाना, बहुत स्थिर और एकाग्र रहना, इसके लिए दो शक्तियों पर विशेष ध्यान दो। और वो दो शक्तियां बाबा कहता है, एक नामी और एका नामी। ये दो शब्द बाबा कई मुरलियों में यूज कर चुके हैं, आप सबने ध्यान दिया होगा। एक नामी जब कहता है तो एक बाबा दूसरा न कोई, मैं बाबा का, बाबा मेरा, न किसी के स्वभाव का प्रभाव हो। कई आत्माएं एक दूसरे के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाती हैं, देहधारियों के प्रभाव डाल देती आत्मा, या प्रभाव डाल देगी या अपने दबाव में ले आएगी। हम किसी भी आत्मा के प्रभाव में ना आ जाएं, ये बहुत अच्छा है, ये गुणवान है, बहुत अच्छी बातें करता है, हैं अच्छाइयां, लेकिन किसकी देन है? बाबा हमेशा कहता है ये प्रभु देन है। अच्छाइयों पर प्रभावित होकर के उस आत्मा में अटक नहीं जाना, किसी आत्मा के साथ बुद्धि योग लटक न जाए, इसका ध्यान रखना, और किसी के संस्कारों के टकराव में नहीं आना। स्वभावों का प्रभाव पड़ता है, स्वभाव से आत्मा अपने दबाव में ले आती है और संस्कारों के कारण टकराव पैदा होते हैं। भिन्न भिन्न संस्कार हैं, हर आत्मा का अपना संस्कार है। यदि उसने अपने संस्कारों पर कड़ी नजर नहीं रखी, परिवर्तन नहीं किया, तपस्या नहीं की, तो संस्कार जल्दी चेंज नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते, निकलते रहते हैं। इसलिए इस बार की मुरली शायद आप सबने ध्यान दी हो, जो रिवाइज कोर्स की 9 तारीख की मुरली चली थी, 69 की मुरली थी, उसमें संस्कार परिवर्तन का एक बहुत सहज बाबा ने पुरुषार्थ सुनाया है और खुद का अनुभव सुनाया कि ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार से तपस्या की, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा बीच बीच में शरीर से गायब होने का अभ्यास करते थे। उस बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते थे। आप बच्चे भी अगर अपने कड़े संस्कारों को सचमुच चेंज करना चाहते हो तो ऐसी गहरी तपस्या चाहिए, तब ये संस्कार जो प्रबल हैं, जिनका टकराव हो जाता है, जो कहीं न कहीं से इमर्ज हो जाते हैं, उन संस्कारों को आप चेंज कर सकेंगे। योग अग्नि का रूप चाहिए, चलते फिरते विचार सागर मंथन करना, रूह रिहान करना, बाबा से बातें करना, समान में रहना अलग चीज है, लेकिन एक शक्तिशाली योग जिसमें मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, एक टिक हो जाए, एक बाबा दूसरा न कोई उस बीज रूप स्थिति में बैठ जाए, संस्कार चेंज होने लगेंगे, परिवर्तन आएगा, आपकी आदतें चेंज होने लगेंगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने संस्कारों को यथार्थ योग की विधि से पहले चेंज करो, तब बाबा की यथार्थ टचिंग आपके पास आएगी। तो एक नामी बन करके इतनी एकाग्रता हो जाए जो बाबा की बातों को सहज आत्मा कैच कर सके, जैसे बाबा कह रहा और मैं सुन रहा हूं, बाबा की टचिंग यथार्थ आ रही है, कोई उलझन नहीं है, बहुत लाइट हूं, बहुत हल्का हूं, करना है वो कर लेता हूं, कहीं मूंझता नहीं हूं। लेकिन मान लो फिर भी आपको लगता है कहीं दुविधा है, संकल्प बार बार आते हैं, पता नहीं मेरा ही संकल्प तो नहीं है, तो बाबा हमेशा कहता है कि दो तराजू हैं, ध्यान देना, गहरी बात सुना रहा हूं, आप अपनी बुद्धि के संकल्प जो बाबा ने टच किए, आपको लगता है बाबा की टचिंग है, बाबा की उसी दिन की मुरली से उसका कंपेयर, या वरदान में, या स्लोगन में, या बाबा के महावाक्यों में, उससे संबंधित कोई न कोई पॉइंट उस मुरली में जरूर होगी। ये भी बाबा का कमाल है, जादू है। और अगर मान लो मुरली से कोई बात ऐसी नहीं मिल पाई, आपको लगता है कि नहीं ये टचिंग अलग थी, तो निमित्त आत्माओं के माध्यम से उनके समीप जाने से, उनके वाइब्रेशन से, उनके बोल से कोई ना कोई उत्तर उस प्रकार का मिल जाए, वो यथार्थ टचिंग कही जाएगी। मुझे टचिंग आई और उसने हां में हां मिलाई, जैसे सपोर्ट दे दिया। तो इस प्रकार से हम बाबा की टचिंग को बहुत स्वच्छता, दिव्यता, पवित्रता के आधार से बहुत सरल रीति से समीप अनुभव कर सकते हैं। तो कई बार जब निमित्त स्वरूप में हम रहते हैं, निमित्त है, कोई भी प्रकार का न अपमान का कोई भान है, कोई अपमान मेरा कर गया, और न कभी अभिमान आता है कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मेरी टचिंग्स बहुत अच्छी हैं। बाबा कहते हैं ये जो मैं और मेरा है, जब तक तुमने इसको खत्म नहीं किया, सचमुच बाबा की यथार्थ टचिंग नहीं आ सकती। और अगर कोई टचिंग आई है तो उसमें देखो मेरा कल्याण है, इसमें अन्य आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। क्या मैं आत्मा बहुत बहुत इकोनॉमी का अवतार होकर के चल रही हूं? इकोनॉमी का विस्तार बहुत ज्यादा है। बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे समय भी आपका धन है, संकल्प भी आपका धन है, शक्तियां भी आपका धन है, और स्थूल धन भी आपके पास धन है। अगर इन चारों में से कोई भी चीज आप व्यर्थ कर रहे हो, संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं, कुछ देख लिया, संकल्प चल गए, काम नहीं था, जरूरी नहीं था, सोच लिया, चल गया, और इतना विस्तार में चले गए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग गई, आपका समय और संकल्प दोनों शक्तियां व्यर्थ जा रही हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता, बच्चे इसको स्टॉप लगाओ, इसके लिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। बाबा की एक ब्रेक हमेशा मुरलियों में आप सभी सुनते हो, कोई भी बात हो जाए, कोई नुकसान भी हो जाए, कोई देवाला भी मार दे, कोई बड़े से बड़ी परिस्थिति भी आ जाए, कौन सी ब्रेक थी बाबा के पास? कौन सी? नथिंग न्यू, बच्चे नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। और इतने लाइट रूप से नथिंग न्यू, मुस्कुरा देना, हल निकल, बस जैसे हल्का कर दिया, बच्चे नई बात थोड़ी है। तो कलप कलप हुई थी, तो ड्रामा में नूंद थी, ड्रामा की ढाल को इतना मजबूती से पकड़ करके रखा, चाहे बच्चों के द्वारा भी गिनाए, समाज के द्वारा आए, परिवारों के द्वारा आए, सरकार के द्वारा भी आए, क्या नहीं आया। स्थापना के समय में हर प्रकार के विघ्नों का एक आत्मा ने सामना किया, बच्चों को भी पता नहीं चलने दिया। एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी, चैलेंज थी काम महाशत्रु की। ब्रह्मा बाबा कहता था मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो खुद गृहस्थी था, मैं कैसे कहूंगा। अब कहने वाला चला जाता कह करके, लेकिन मैं उसको काट नहीं सकता हूं। इसी चैलेंज के आधार से लोग कहते थे ये बात बाबा को कि बाबा ये बात आप कहना बंद कर दो, आपकी संस्था बहुत बढ़ जाएगी। और बाबा कहता था गीता का भगवान खुद कह रहा है, मैं कैसे कहूं नहीं करो। एक चैलेंज के आधार से अनेक विघ्नों का सामना, काम महाशत्रु है। चाहे तुम प्रवृत्ति में रहो, चाहे साथ रहो, चाहे कहीं भी रहो, ये आग नहीं लगनी चाहिए, पवित्र बन करके दिखाओ। इस पवित्रता के व्रत के पीछे बहुत पेपर आए, बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा ने उनको हंसते हंसते झेल लिया, पार कर गए, पास हो गए। स्थापना की नींव पड़ गई और आज तक भी इस विद्यालय के अंदर कहीं भी कोई रुकावट और विघ्न आ रहा है, उसका मूल कारण होता है, पीछे उसका होता है कहीं न कहीं पवित्रता का उल्लंघन। अगर आत्माएं पवित्रता के व्रत में पक्की हैं, नियम में पक्की हैं, दृढ़ता है, तो विघ्न समाप्त हो जाते हैं, बाबा उनकी रक्षा करता है, मदद करता है, क्योंकि बुद्धि बहुत स्वच्छ और साफ है, सच्चाई है, उसके आधार से बाबा की टचिंग है, कैचिंग है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि लाइट रहने के लिए, बुद्धि को हल्का रखने के लिए ड्रामा की ढाल बहुत मजबूत पकड़ करके रखो। कोई भी पेपर आए, नथिंग न्यू, नहीं नहीं है, नया नहीं है, पार हो जाएगा, आएगा और खत्म हो जाएगा, हिलाएगा नहीं। तो नथिंग न्यू का एक पाठ ब्रह्मा बाबा के जीवन का अंग रहा और उसके आधार से इतनी स्थापना का कार्य हुआ। आज तक भी बाबा हम सबको वही पाठ पढ़ा रहे हैं। बच्चे, हर आत्मा का अपना पाठ है, हर आत्मा अपने अपने रीति से अपना कर्तव्य कर रही है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। जब कोई अनहोनी है ही नहीं, फिर चिंता किस चीज की। इतना सरल शब्दों में बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया, और ज्ञान नहीं दिया लेकिन उसका स्वरूप खुद बना, और खुद बन करके इतना बेफिक्र वास रहा। यदि आत्माएं कोई फिक्र लेकर के बैठती हैं, उनकी बुद्धि बाबा की बात को टच नहीं कर सकती, उसके अंदर टचिंग पावर नहीं आ सकती। इसलिए बेफिक्र स्थिति में रहना, निश्चिंत स्थिति में रहना, निश्चय बुद्धि हो करके रहना, एक नामी और एका नामी का अवतार बन करके रहना, ये बाबा की टचिंग को स्पष्ट रूप से अनुभव करने का साधन है। लेकिन कहां तक मैं आत्मा इन बातों पर ध्यान रखती हूं, क्योंकि बाबा कहता अंत समय जब आएगा, एक सेकंड का पेपर होगा, अचानक का पेपर होगा, उसमें यथार्थ टचिंग आनी चाहिए सेफ्टी के स्थान पर पहुंचने की। अब बाबा टच करे और बच्चा अपनी मस्ती में मस्त हो, बाबा क्या करे? बाबा कह रहा बच्चे यहां से निकल जाओ, यहां से हट जाओ, यहां से चले जाओ, लेकिन उसकी बुद्धि अनेक प्रकार के प्रश्नों में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हलचल के अंदर है, व्यर्थ संकल्पों में है। बाबा टच करेगा फिर भी हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे बहुत शुद्ध बुद्धि बनाओ, असोचता बनो, बहुत निर्संकल्प स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, ड्रामा की ढाल को सामने रखो और बाबा से बहुत प्यार का सच्चा संबंध रखो। अगर स्नेह है, सच्चा संबंध है, बुद्धि बहुत साफ और स्वच्छ है, बाबा उसको हमेशा प्रेरित करेगा, टच करेगा, और जहां सेफ्टी होगी, जहां फायदा होने वाला होगा, अपने आप कहेगा बच्चे इधर चलो, इधर नहीं इधर जाओ। ऐसा साथी जो आज बाबा ने कहा ना, बच्चे कंपेनियन बनाते हैं लेकिन कंपेनियन छूट जाता है, अब मुझे कंबाइंड समझो, कितनी अच्छी बात थी। कंपेनियन भी अलग हो सकता है लेकिन कंबाइंड है तो अलग नहीं हो सकता। तो संगम युग पर हम सभी बाबा के साथ कंबाइंड रहना सीखे, लेकिन कंबाइंड तभी रहेगा, कब रहेगा, जैसा वो है समान स्वरूप में जब आत्मा पहुंचेगी। कोई छोटा हो कोई बड़ा हो तो कैसे कंबाइंड होगा, कोई बहुत मोटा हो कोई बहुत पतला हो तो भी कंबाइंड नहीं होगा। बहुत सोच सोच करके जो मोटे हो गए, बहुत इधर उधर की बातों को अपने ऊपर बोझ के रूप में लेकर के चल रहे हैं, बाबा कहता है ऐसी आत्मा के साथ मैं कैसे कंबाइंड होगा। इसलिए जैसे बाबा पावन है, जैसे बाबा लाइट है, जैसे बाबा बहुत निश्चिंत रूप में बेफिक्र वासा है, बाबा कहता मेरे बच्चों को संगम युग पर मैं ऐसा समान बनाना चाहता हूं। तो ऐसा समान बन करके बाबा की कैचिंग पावर को, टचिंग पावर को हम अपने अंदर जागृत करें, और बाबा क्या इशारे कर रहा है, क्या बाबा का डायरेक्शन है, उसको कैच करें। सेफ्टी है हर प्रकार से, कोई भी आत्मा, आत्माओं को भी हम परख सकेंगे, क्योंकि आत्माओं के बहुत वैरायटी रूप हैं। कई बार कहते हैं भगवान को परखना सहज है, इंसान को परखना मुश्किल है। इसलिए हर आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, वो किस भाव से सामने आया है, सेंटर पर भी किस लक्ष्य से आया है, ये क्या बात चाहता है, इसकी चाहनाएं क्या हैं, जब हम सबकी बुद्धि इतनी स्पष्ट स्वच्छ और साफ होगी, हम सामने वाली आत्मा की विचारधाराओं को, उसके वाइब्रेशंस को परख सकेंगे, और परख करके सेफ भी रहेंगे और उसकी इच्छाओं को भी पूरा कर सकेंगे। तो हर आत्मा की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या चाहनाएं हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर बहुत वैरायटी स्वरूप से आत्माएं अपना रूप बना करके सामने आती है। तमो प्रधान सृष्टि है, कोई धोखा देने के लिए आता है, कोई छलने के लिए आता है, कोई कुदृष्टि रख करके आता है, ज्ञान लेने के लिए, भक्ति का फल लेने के लिए तो बहुत थोड़ी सी आत्माएं आती हैं। अब उन आत्माओं की उसी तरह से परख करके पालना की जाए, इसके लिए अपनी बुद्धि की दिव्यता, अपनी बुद्धि की सच्चाई, अपनी बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ रहे। इसलिए ध्यान रखना कि बुद्धि किसी भी प्रभाव में प्रभावित न हो, और बुद्धि में किसी के गुण दोष, ये विशेषता है ये अवगुण है, वो नोट न हो। है सबके अंदर, कोई विशेषताएं भी हैं तो कोई बुराइयां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। बाबा कहता बच्चे संगम युग पर तुम इन सब से मुक्त हो जाओ, बाबा हवाले कर दो, जो जैसा है बाबा जाने, वो आत्मा जाने, उसका पार्ट जाने। जब हम सभी अपनी बुद्धि को इतना निर्मल, इतना स्वच्छ, इतना पवित्र, इतना एकाग्र बना लेंगे, तो बाबा की टचिंग ऊपर से आएगी और वही होगा जो बाबा चाहता है। ये कोई भी कर्मिंद्रियां कोई अलग कार्य कर ही नहीं सकती, बाबा की चाहना के बिना कुछ भी नहीं कर सकती आत्मा। तो हम सभी संगम पर अपने पुरुषार्थ को सरल बनाएं, अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाएं, और ध्यान रखें सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहे। शुद्ध संकल्पों का जो खजाना है, हम सबको बाबा ने अथाह दिया है। मुरली शुद्ध संकल्पों का खजाना है, खूब पढ़ो, बार बार पढ़ो, खूब अच्छी तरह से चिंतन करो, जितनी बार समय मिले बार बार मुरली का अध्ययन कर लो, बुद्धि शुद्ध संकल्पों के खजाने से भरपूर हो जाएगी। और अशुद्धता का अगर वार भी होने वाला होगा तो शुद्धता की शक्ति उस वार को समाप्त कर दे। तो वर्तमान समय की आवश्यकता है बाबा की पावर्स को, बाबा की जो अंदर की इशारे हैं उनको कैच करो, और कैच करके अपने आप को सुरक्षित करके अन्य आत्माओं को सुरक्षा प्रदान करो। ओम शांति।